తీరతం కరుణామయం నమామి చిన్మయం దేవం సద్గురుం బ్రహ్మ విద్వరం వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
भगवान ने एक सृष्टि चक्र बताया. क्या सृष्टि चक्र था? कि अक्षर ब्रह्म है, उस ब्रह्म से वेद आया, इसलिए हमारे वेद के कोई ऑथर नहीं है, कोई लेखक नहीं है. वेद को हम लोग अपौरुषीय कहते हैं, क्योंकि इससे आया अक्षर ब्रह्म से आया वेद. वेद में क्या है? मतलब कर्मकांड लिखा हुआ है, और भी कई कुछ हैं. उस कर्म कांड के अंदर आपको यज्ञ भी मिलता है, कैसे यज्ञ करना है, क्यों यज्ञ करना है, अपनी कामना पूर्ति के लिए करना है. फिर यज्ञ जो है आपका बारिश के लिए भी होता है, अगर आपको बारिश चाहिए, बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ करो, तो यज्ञ करने से फिर बारिश होती है, बारिश होने से अन्न होगा, अन्न होने से जीव पैदा होंगे, भूतानी होंगे, और जीव अगर वो उसको ज्ञान मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्म हो जाएगा. देखो चक्कर आ गया ना पूरा, ब्रह्म, वेद, कर्म, यज्ञ, वारिस, उसके बाद में अन्न, अन्न के बाद जीव हुआ. जीव जो है अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो बोलते ये सृष्टि चक्र चल रहा है. और ये सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? बोले कर्म के ऊपर है. सारा सृष्टि चक्र जो है एक पर्टिकुलर कर्म के हिसाब से चल रहा है. भगवान ने जब वेद दिए तो उसकी कोई रॉयल्टी नहीं मांगते किसी से. हमारे महात्मा कहते हैं आपकी पैतृक संपत्ति है, क्यों नहीं लेते हो? आपका सबका अधिकार है उसके ऊपर में. कैसे रहना है उसमें धर्म, कर्म कांड, ज्ञान कांड सब है वेद के अंदर में. उसके हिसाब से सृष्टि में काम हो रहा है, सब काम करते हैं, मगर कोई पैसे नहीं मांगता. बारिश होती है तो क्या उसका पानी का टैक्स का बिल आता है? नहीं आता है. पृथ्वी से जब अन्न उत्पन्न होता है तो पृथ्वी वहां कुछ मांगती है आपसे? कुछ नहीं मांगती. उसके बाद में उस अन्न को आप खा के जब जो है भूत होते हैं, जो जीव पैदा होते हैं, तो माता लोग समझती है हमने जन्म दिया है. उस परमात्मा की चिंता करो कि जो ऐसी गंदी जगह में बैठ के जहां पर लाइट नहीं है, जहां हिलने डुलने की जगह नहीं है, वहां पर वो जो है जीव को बनाता है. जस्ट सी. और कितनी कॉम्प्लिकेटेड ये बॉडी है, वहां बैठ के बनाता है वो. तो कोई भी जो है आप देखोगे कोई इसके अंदर रिवार्ड नहीं लेता है. तो भगवान कहते हैं देखो सृष्टि में एक कर्म का चक्र चल रहा है, तुम भी कर्म करो. तो हमारे क्या कर्म है? बोले आपके कर्तव्य कर्म है कुछ, वो कर्तव्य कर्म आप करो. क्या कर्तव्य कर्म है? बहुत बार हमने देखा है हमारे वर्ण आश्रम और हमारी सोसाइटी में जैसी पोजीशन है उसके हिसाब से हमारे कर्तव्य कर्म है, आपकी ड्यूटी है. आप नौकरी करते हो तो आपको बोल देते हैं आपको ये काम करना है, तो वो आपका कर्तव्य कर्म हो गया. तो कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म करो. तो ये तो सबके लिए है, सब लोगों के लिए. अब एक ऐसा व्यक्ति भी है, आप लोग भी जानना चाहोगे, कोई एक्सेप्शन टू द रूल भी है. एक्सेप्शन टू द रूल क्या होता है? ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती है, हम नहीं मानेंगे, हम जाएंगे. एक्सेप्शन टू, एम्बुलेंस वाले करते हैं ना, पुलिस वाले करते हैं एक्सेप्शन टू द रूल. आप लेफ्ट से जाते हो राइट से भी आ सकते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल. सारी सृष्टि में ऐसा कर्म हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कर्तव्य कर्म नहीं करना पड़ता है। आप लोग सब जानना चाहोगे कौन है व्यक्ति? अर्जुन तो बहुत इंटरेस्टेड था, अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करने को बार बार भगवान कहते हैं और वो नहीं करना चाहता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कर्तव्य कर्म नहीं करना, ओ बोला जल्दी बताओ क्या मैं उसके अंदर क्वालिफाइड होता हूं कि नहीं होता हूं, मेरे लिए है कि नहीं है। तो भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, कोई कार्य नहीं है, कार्य मतलब कर्तव्य कर्म नहीं है। तो हम सबके लिए तो कर्तव्य कर्म है मगर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा यह जो प्रसिद्ध आत्मा है, शंकराचार्य जी बताते हैं यह जो प्रसिद्ध आत्मा है, अब आत्मा तो आपको मालूम है, प्रसिद्ध आत्मा है, उसको जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, जिसने उस आत्मा को जान लिया एवं उसका जो मिथ्या ज्ञान है उससे निवृत्त हो गया। हमारा जितना भी ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? हम प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर जो भी बने हुए हैं वो हमारे स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान है? क्योंकि एक समय में रहने वाला है, ये बदलता रहता है, बराबर बदलता रहता है। आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, आईटी सेक्टर में देखो कितना जल्दी बदलता है ज्ञान, फटाफट बदलता है, साइंस बदलता है, आपके कानून बदलते हैं। आप सोचोगे कि हमने कानून पास कर लिया, लॉ पास कर लिया और कुछ नहीं करना है, नहीं। आप सोचोगे मेडिसिन एक बार पास करनी है और पढ़ने की दरकार नहीं है, इंडिया में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ अशोक जी बैठे हुए हैं, नई नई मेडिसिन निकालते हैं, तो वो जो है आपको अपडेट करना होता है, परीक्षा देनी पड़ती है फिर से। इसलिए सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है, जो कुछ भी बदलता है वो मिथ्या है। जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, ऐसे जो महात्मा, जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको शंकराचार्य जी कहते हैं महात्मा। ब्राह्मण गण, उसको ब्राह्मण कहते हैं भले ही आप शूद्र जन्म में जन्म लिए हो, जिसको आत्मज्ञान हो गया वो अब ब्राह्मण हो गया, जो ब्रह्म में चरण करता है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण गण अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली, अज्ञानी लोग देखो ये काम जरूर करते हैं। शंकराचार्य जी बताते हैं कि अज्ञानी क्या क्या करते हैं, तो आप अगर इस कैटेगरी में हो तो देखना क्या आप उसमें हो कि नहीं हो। क्या है? पुत्रादि की इच्छाओं से रहित होकर, देखो अज्ञानी क्या चाहता है, पुत्र आदि इच्छाएं। तीन किस्म की, हम बताया था आपको कि तीन किस्म की इच्छाएं होती हैं, कौन कौन सी है? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। हमारी जितनी भी कामनाएं हैं ना इन तीन कैटेगरी में आ जाएंगी, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाएं। तो अज्ञानी क्या करता है? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा करता है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? कामिनी, कांचन, कीर्ति। कामिनी माने स्त्री, कांचन मतलब वेल्थ, अकीर्ति लोकेष्णा। कामिनी, कांचन, कीर्ति में अज्ञानी लगे रहते हैं। मगर ये जो ज्ञानी कैसा है? इन इच्छाओं से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा का आचरण करते हैं। ज्ञानी के अंदर पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा नहीं है। वो क्या करते हैं? केवल भिक्षा का आचरण करते हैं। भिक्षा दे दो भाई, क्यों भिक्षा का आचरण करते हैं? शरीर निर्वाह, शरीर तो रहेगा ज्ञान के बाद, ज्ञानी को भूख लगेगी तो क्या करेगा? भिक्षा दो।
भिक्षा का आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। उस आत्मज्ञान के अंदर निष्ठा, अबाइडेंस इन दैट नॉलेज छोड़कर और उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो उसका मन कहां है? उसका मन ब्रह्म में लीन है, उसकी रति तृप्ति संतुष्टि केवल ब्रह्म में है। और हमारी रति कहां है? ज्ञानी की रति ब्रह्म में है, हमारी रति विषयों में है। देखो आप विषयों में भ्रमण करते हो कि नहीं करते हो? उसकी तृप्ति कहां है? उसकी तृप्ति आत्मा में है। हमारी तृप्ति कहां है? हमारी तृप्ति अन्न में है। उसकी संतुष्टि आत्मा में है, हमारी संतुष्टि कहां है? विषयों के मिलने से हम संतोष हमको होता है। अच्छा ये भी आ गया, अब हमको ये भी मिल गया, संतोष हो जाता है। तो कितना डिफरेंट है देखो। अज्ञानी विषयों में रमन करता है, अन्न में रमन करता है, और विषयों की प्राप्ति में संतोष को खोजता है, संतुष्टि उसको, मगर परमानेंट संतुष्टि नहीं है। और ज्ञानी के पास आत्मरति, आत्मरति मतलब आत्मा में रमन करता है, आत्मा में ही तुष्ट है, आत्मा में ही वो संतुष्ट है। मुंडक उपनिषद ने कहा कि ऐसे लोग केवल आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं, ऐसे लोग केवल आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं। कौन है ये लोग? क्या हम ऐसा बन सकते हैं? इन लोगों का कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। क्या हम ऐसा बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। क्या करना होगा? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लें तो आप भी जो है आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। प्रजहाति यदा कामान, जब आपकी सारी कामनाएं खत्म हो जाएं, कौन सी कामनाएं? पुत्रेष्णा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान। आप बोलोगे नहीं नहीं, हमने एक को कंट्रोल कर लिया, 33% हुआ, नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान। पार्थ, ओ अर्जुन, कहां है ये कामनाएं? मनोगतान, मन के अंदर है सब। आपकी वासना कहां है? मन के अंदर है, वेरी सटल। इनको तो छोड़ दिया, चलो सारी कामना कहें, फिर आत्मनि आत्मनः तुष्टः, अपनी आत्मा में वो तृप्त है, उसी में रमन करता है, उसी के अंदर उसको संतोष है, उसी में वो तृप्त है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ मतलब ज्ञानी कहते हैं। तो आपको ज्ञानी बनने के लिए क्या करना होगा? आप पकड़ते जाओ, मैं एक एक करके साइंस आपको बताता जाता हूं। केवल सुनने में अच्छा लगता है ऐसे नहीं होगा, सुनने में अच्छा लगता है बस सुनते जाओ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान। अब आप पूछोगे कैसे होता है? तो जिस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, ये चैप्टर 2 का 55th श्लोक है और अभी हम चैप्टर 3 के अंदर हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे, संभवतः पूरा एक लेक्चर हमने इस एक श्लोक को समझाने के लिए किया था, कैसे ये आपकी सारी कामनाएं खत्म हो सकती हैं। इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्ट, आत्मतुष्ट, आत्मक्रीड़ा, ये शब्द भिन्न भिन्न है मगर आइडिया एक है कि ज्ञानी केवल अपनी आत्मा के अंदर रेबल करता है। क्यों भाई उसमें रेबल करता है? क्योंकि वो सारे सुख का सोर्स है, स्रोत है, सारे सुख वहां से आते हैं, उसने उस स्रोत को पकड़ लिया, तो इसके लिए उसी तरह वो रहता है।
वो किसी बाह्य वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर अपने सुख के लिए निर्भर नहीं है, उसका सुख का सोर्स आत्मा है। किसी भी व्यक्ति सिचुएशन ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए या जो है चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर आप अपने कर्तव्य कर्म के बोझ से दबे हुए हैं, पीछे जा रहे हैं, कर्तव्य कर्म खत्म नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताएंगे आपको, क्यों आपका कर्तव्य कर्म खत्म नहीं होता है। तो कहते हैं ना ये बतस्य वर्ष 18
नैव तस्य कृते नाथ नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृते नाथः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।
न एव तस्य, तस्य का शंकराचार्य जी कहते हैं परमात्मा रते, जो आदमी उस आत्मा में रमन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का कृतेन अर्थ, उसको कोई कर्म नहीं करना है, उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, क्योंकि वो सुख को प्राप्त कर चुका है और उसको कुछ पाना नहीं है, इसलिए उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर आपको कुछ पाना नहीं है तो आपका कोई प्रयोजन नहीं कर्म करने का। अगर हमें कुछ पाना होता है तभी तो हम कर्म करते हैं, पाना ही नहीं है हम क्यों कर्म करेंगे। अच्छा, दूसरे पाद में कहते हैं न अकृतेन इह कश्चन, अच्छा उसके न करने से भी कोई हानि नहीं है, उसको कर्म करना नहीं है क्योंकि प्रयोजन नहीं है, हमको नहीं चाहिए, और कर्म नहीं करता है बोले कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो कर्म करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं है और करने का नुकसान नहीं है। कर्म न करे तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगता, अज्ञानियों को दोष लगता है। प्रत्यवाय दोष मतलब क्या होता है, प्रत्यवाय दोष जैसे अब मान लो आपने किसी के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपका ये मकान बना दूंगा, आपने कहा अच्छा ठीक है भाई आपको 1,000,000 देंगे मगर इस स्टेज में ऐसा ऐसा पेमेंट होगा। अब मान लो वो केवल फाउंडेशन करके भाग गया, नहीं करना चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या करोगे आप, पेमेंट तो करोगे नहीं, बल्कि उसके अंदर एक पेनल्टी क्लॉज होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया पेनल्टी दो, ये प्रत्यवाय दोष। या शंकराचार्य जी कहते हैं कि दवाई खाने का बाद में जो साइड इफेक्ट होता है वो प्रत्यवाय दोष है। तो कहते हैं इस आदमी को, ज्ञानी को प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है, वो अगर नहीं करे तो उसको प्रत्यवाय दोष नहीं है। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः, वो किसी भी प्राणी वस्तु एवं स्थिति पर कुछ पाने के लिए आश्रित नहीं है। मगर समाज में देखो हम लोग सब आश्रित हैं, आपको नौकरी चाहिए तो आप आश्रित हो ना, जिसके हाथ में नौकरी है उसके ऊपर आश्रित हो। अगर मान लो आपके पास नौकरी मिल गई, आपको प्रमोशन चाहिए, तो किसके पास आप आश्रित हो, जिसके हाथ में प्रमोशन है उसके पास आप जाओगे। तो हम सब आश्रित हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति था, उसने देखा कि एक विधवा औरत है, बहुत धनी है, बुढ़ी हो गई है, उसके पास एक कुत्ता है, कुत्ते से उसका बहुत प्रेम है। तो ये स्वार्थी व्यक्ति उसके घर में गया, मिलना जुलना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। उसने देखा जो है ये बूढ़ी औरत कुत्ते को बहुत प्रेम करती है, तो भी कुत्ते को प्रेम करने लगा कि मरने के बाद में शायद ये हमें लिख देगी, आफ्टर ऑल हम तो इंसान ही हैं, वो तो कुत्ता है। तो जब बुढ़िया मरी तो उसने विल लिखा कुत्ते के नाम में। तो इसको लोग कहते हैं, हम लोग जी हजूरी या ठाकुर साहूती कहते हैं, जो अच्छा लगे वही करना है, हां में हां मिलाना है, वो नौकर बन जाता है, खुशी उसी में है, मगर आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता। आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता। आपको मैं एक रियल घटना सुनाता हूं। आपने ठाकुर रामकृष्ण का नाम सुना है, दक्षिणेश्वर का नाम सुना है? दक्षिणेश्वर का मंदिर एक रानी, रानी रासमणि ने बनाया था, और ठाकुर रामकृष्ण वहां पंडित थे, पुजारी थे। तो एक बार रासमणि आई वहां पर मिलने के लिए, ये तब तक जो है उनको ज्ञान हो चुका था, तो मिलने आई तो बैठी हुई थी सामने, बात बात कर रही थी, तो कुछ अनमनस्क हुई होगी, कुछ ठाकुर कह रहे होंगे, वो कुछ सोच नहीं रही होगी, तो देख रही होगी, उसने धड़ाक से एक थप्पड़ मार दिया रानी को। आत्मज्ञानी किसको मारा? रानी कौन है? एम्प्लॉयर है। ठाकुर रामकृष्ण क्या थे? एम्प्लॉई थे। आप मार सकते हो अपने एम्प्लॉयर को? आत्मज्ञानी कर सकता है ऐसा? आत्मज्ञानी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। एक बार तुलसीदास जी को अकबर ने बुलाया, दरबार में आओ। तुलसीदास बोले आप आके मिल जाओ। तो उन्होंने बताया कि देखो हम आपके दरबार में जाएंगे ना तो हमको दो नुकसान होगा। एक तो नुकसान है मेरा जूता घिसेगा, इतना दूर जाना है। दूसरा है, बोला सबसे बड़ा और नुकसान है कि हरि नाम भूल जाएगा हम। हम भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो नाम छूट जाएगा हमसे। आपसे बात करेंगे हम तो दिन रात राम राम करते रहते हैं, नाम ही छूट जाएगा हमारे से, तो हम नहीं जाएंगे आपके यहां। हम चाकर रघुनाथ के पठियो लिखियो दरबार। तुलसीदास जी कहते हैं हम चाकर, हम तो नौकर है रघुनाथ के, राम जी के नौकर है, और आपका दरबार क्या है? पठियो लिखियो, पढ़ा लिखा दरबार है। बिसर जात हरि नाम, ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया कि हम आपके दरबार में जाएंगे तो नाम भूल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आपके यहां। नहीं गए वो? आपको मिलना तो आ जाओ। अकबर कौन था? सम्राट था। आत्मज्ञानी ऐसा सम्राट को कह सकता है। ऐसा साहस केवल किसी संत या आत्मज्ञानी में होता है। एक बार सिकंदर यहां आए तो उन्होंने, वहां के लोगों ने कहा कि भाई हमने बहुत कुछ सुना है, वहां पर संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, एक को ले आना, नमूना ले आना एक। तो सिकंदर जा रहा था वापस अब धन दौलत लेके, तो बोला अरे ये तो लास्ट आइटम छूट गया, एक संत को भी लेके जाना है वहां, ऐसा फरमाइश था। तो एक संत उसको मिल गया कहीं पर, फक्कड़ बाबा लंगोटी पहने हुए थे, लेटे हुए थे इतना आराम से। सिकंदर बोला कि तुम हमें पहचानते हो? बोला नहीं पहचानते, हम तुमको लेने आए हैं, हमको वहां लेके जाना है आपको, हमारे राज्य में चलिए। सिकंदर को कहता थोड़ा हट के खड़ा हो, हमको धूप लग रही है, धूप तुमने अटका दी मेरी। फिर उसने धमकी उमकी दी सिकंदर ने, हम तुमको मार देंगे। बोले तुम क्या मारोगे? आत्मा कोई मार ही नहीं सकता, शरीर को मार दोगे? मार दो। नहीं गए वो? आत्मज्ञानी ऐसी बात सिकंदर से, अकबर से या रासमणि से कर सकता है। तो यह अर्थ हुआ कि न कश्चित अर्थ व्यापाश्रय का। आत्मज्ञानी की स्थिति क्या है? देखो चरम वैराग्य होता है उसमें और अभय होता है, कोई भय नहीं है। क्यों भय नहीं है?
नो ड्यूअलिटी।
क्योंकि ड्यूअलिटी नहीं है, वो तो ब्रह्मन है, दूसरा कोई है ही नहीं। डर कब लगता है आपको? जब दूसरा कोई होगा तभी डर लगेगा, नहीं तो डर नहीं लगता है। तो अभय स्थिति है। और कश्चित सुखम न करोति भी राग, कौन सा ऐसा सुख नहीं है जो विरागी, जो वैरागी को नहीं मिलता है? आप लोग सोचते होंगे कि फक्कड़ बाबा नंगा अवधूत महात्मा है, इसको क्या है, कुछ नहीं है इसके पास में। मगर हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा कौन सा सुख है जो उसके पास नहीं है, जिसके पास में सुख का जो है भंडार है, स्रोत ही उसके पास में है, तो उसको फिर छोटे मोटे सुख की क्या दरकार है, कोई दरकार नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन एकश्चन, ज्ञानी का कोई कर्तव्य कर्म नहीं है और कर्म नहीं करने से कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, अज्ञानी जो है कर्म करता रहता है, उसकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। अब प्रश्न उठता है क्यों नहीं खत्म होती है? ध्यान से सुनो, ज्ञानी जो भी चाहता है, जिस चीज के लिए भी कर्म करता है, वो सारी की सारी लिमिटेड है, सीमित है। $1 million चाहिए, सीमित है। 3 मकान चाहिए, सीमित है। पुत्र पुत्री चाहिए, सीमित है सब। उसके लिए जो है अब क्या करता है, सीमित कर्म करता है। कर्म भी सीमित है, तो सीमित कर्म से असीमित फल कभी नहीं मिल सकता। ए फाइनाइट एक्शन कैन नेवर गिव यू इनफाइनाइट रिजल्ट, कभी नहीं होगा। फाइनाइट एक्शन विल गिव यू, और हम जो है वो थोड़ा सा सुख मिला, फिर और सुख चाहते हैं, फिर और फाइनाइट कर्म कर दिया, और सुख मिला, करते 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 जीवन बीत गया, और करने का तरीका मालूम नहीं है कैसे कर्म करना है। वासना हम बढ़ाते गए, हुआ क्या, जन्म के बाद जन्म चलता रहा। अब साइंस आपको समझ में आया, अज्ञानी को क्यों जन्म के बाद जन्म होता रहता है? क्योंकि उसका हर कर्म सीमित है, सीमित कर्म सीमित फल देगा। जब वो फल देता है उसको सुख मिलता है, वो भी सीमित है। क्योंकि हमारा नेचर है कि हमें सुख चाहिए, इसलिए हम सुख की खोज में बार बार सीमित कर्म करते हैं, बार बार सीमित फल लेते हैं, करते करते सारा जीवन चला जाता है। आपको कुछ पाना है तो आपको करना है, आपको सुख चाहिए आपको कर्म करना है, तो ये कंटिन्यूस हमारा चलता रहता है। मगर ज्ञानी, ज्ञानी को तो इनफाइनाइट सुख मिल चुका है, और किस लिए आपको कर्म करना है, उसको कोई कर्म नहीं करना है। अगर आपको इस संसार में कुछ पाना है तो कुछ करना होगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए, फॉरगेट अबाउट, अब दुनिया की बातें हम छोड़ देते हैं, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो क्या करना होगा, गुरु के पास जाना होगा, कर्तव्य कर्म। उसके लिए आपको साधना क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न होना होगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न आपको होना होगा। साधन चतुष्टय क्या है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुच्छुत्तम, ये आपको चाहिए। चूंकि पाना है इसलिए आपका कर्तव्य कर्म बनता है कि आप साधन चतुष्टय बनिए। क्या आपको पाना है, ज्ञान पाना है, किसके पास मिलेगा, गुरु के पास मिलेगा, जाना पड़ेगा उसके पास, आपका कर्तव्य बनता है, जाओ। ज्ञान मिल जाने के बाद में खत्म कर्तव्य कर्म, मगर उसके पहले तक कर्तव्य कर्म है। यावत प्राप्तमस्ति तावत कर्तव्यमस्ति, जब तक आपको कुछ पाना है तब तक कुछ करना है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा हमको कुछ पाना नहीं है, तो कुछ करना भी नहीं है, खत्म हो गया। तो ज्ञानी को कुछ पाना नहीं है इसलिए उसका कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं है। देखो, जब आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाते हो ना, अगर आप मान लो रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो या प्लेन से ट्रेवल करते हो,
तो जब तक ट्रेवल करते हो तब तक आपको टिकट पॉकेट में रखना है, बोर्डिंग पास रखना है, मगर आप गंतव्य स्थल पर पहुंच गए उसके बाद आपको रेल कंपनी और एयर कंपनी आपको नहीं कह सकती एयरपोर्ट के बाद निकलने के बाद स्टेशन के निकलने के बाद में कि आपको टिकट संभाल के रखना है। कोई दरकार नहीं है, हमारी मर्जी हम संभाल के रखें नहीं रखें, कोई कर्तव्य कर्म नहीं बनता। जब तक आपके पास में ईगो है, जीव भाव है, तब तक आपके मन में डिजायर आती रहेगी। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां है, जब तक जीव भाव है, जीव भाव मतलब क्या, जब तक आप अपने में ईगो अहंकार है तब तक आपके अंदर डिजायर आती रहेगी। जीव भाव मतलब क्या, जीव भाव आई एम लिमिटेड, हम कौन है, हम यही हैं, हमारी कितनी ताकत है इतनी ताकत है। हम जब तक अपने आप को लिमिटेड मानेंगे हम सारी जिंदगी अपने को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, फाइनाइट से इनफाइनाइट बनने की चेष्टा करते हैं। कैसे करते हैं, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, अपने आप को हम बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, मगर होता कुछ नहीं है, जीवन का टाइम निकल के चला जाता है। इसलिए कोई कर्तव्य कर्म ज्ञानी के लिए नहीं है, मगर जीव के लिए कर्तव्य कर्म है, जीव के लिए कर्तव्य कर्म है। जब तक ईगो है, जीव भाव है, तब तक कर्तव्य कर्म है। जब ईगो नहीं रहेगा कर्तव्य कर्म नहीं है। कैसे प्रूव करोगे, आप लोग रोज सुसुप्ति में जाते हो डीप स्लीप में, तब आपका ईगो रहता है, आपका कोई कर्तव्य कर्म है वहां, कोई ड्यूटी करते हो डीप स्लीप में, नहीं करते, ये प्रूफ है। डीप स्लीप के अंदर अहंकार नहीं है, जीव भाव नहीं है, कर्तव्य कर्म नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर यही काम हम अगर जागते हुए कर लें, जीव भाव को अगर खत्म कर लें, ज्ञानी भर बन जाएं, जीव कौन है, जीव का डिफिनेशन हम लोगों ने कई बार देखा है, जीव क्या है, कॉन्शियसनेस प्लस ईगो इक्वल टू जीव। अब थोड़ा सा अलजेब्रा लगाओ, जीव माइनस इक्वल टू, तो क्या करना है, ईगो कटाना है। जब तक ईगो है, जीव भाव है, तब तक डिजायर रहेगा। जिस दिन ईगो खत्म हो जाएगा डिजायर भी खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आप ये जानना चाहोगे कि अच्छा चलो ज्ञानी हो गया तो इसका मतलब क्या, ज्ञानी कुछ काम नहीं करता क्या? ज्ञान मिलने के बाद में कर्तव्य कर्म नहीं है, तो क्या ज्ञानी कोई काम नहीं करता? देखो ज्ञानी का कोई कंपल्सन नहीं है, उसकी मर्जी आएगी काम करेगा, और उसकी मर्जी नहीं होगी नहीं करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं उसको कह सकते। कैसे समझें आप इसको, देखो एक आदमी व्यापार कर रहा था, उसका एक दुकान थी, एक शॉपकीपर था, एक बिजनेसमैन था, वो आस्ते आस्ते से उसकी उम्र हो गई, उसने क्या किया, अपने बच्चे को उसको ट्रेन कर दिया कैसे बिजनेस करना है, समझा दिया उसको कहां से माल खरीदना है, कैसे बेचना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, समझा दिया सब, पूरा चार्ज उसने लड़के को दे दिया, वो रिटायर कर गया। अब हमको ये बताओ कि ये रिटायर्ड पिता का कर्तव्य कर्म है दुकान में जाना या बिजनेस में जाना जरूरी है? नहीं है, उसकी मर्जी आएगी, वो जाएगा एक घंटे दो घंटे के लिए। क्या लड़का उसको कह सकता है कि आपको रोज आना है बापूजी? नहीं, अब कोई कर्तव्य कर्म नहीं, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मगर हम लोग को, अब एक रिसेंटली मैरिड आदमी हो, दुनिया की हर कंपनी में देखा गया है रिसर्च करके कि जो लोग नए पास करके आते हैं ना
अनमैरिड, उनका टर्नओवर जो है बहुत फास्ट होता है, बड़ी जल्दी जॉब छोड़ते हैं, उनका ईगो इतना जबरदस्त होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी यहां अटैक कर दियो, ए रिजाइन जा। तो सबसे पहले कंपनी को तुमको पहले शादी करवा देनी चाहिए, फिर मजा देखो, फिर जितना पिटाई करो, वो छोड़ के जाने वाला नहीं है, कैसे जाएगा, कर्तव्य कर्म बन गया उसका। देखो ज्ञानी भी जो है बहुत काम करता है। आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, शंकराचार्य जी, वेद व्यास जी, विवेकानंद, स्वामी चिन्मयानंद, ज्ञानी थे सब, कितना काम किया इन्होंने। शंकराचार्य जी ने कितनी सी उम्र के अंदर कितना काम करके चले गए, विवेकानंद ने कितना काम किया, शंकराचार्य जी ने कितना काम किया, गुरुदेव ने कितना काम किया, बहुत काम करते हैं। देखो कर्तव्य कर्म और कर्म के अंदर बहुत फर्क है। ज्ञान के बाद जो है ना कर्म एक जॉय देता है, इट इज नॉट आउट ऑफ कंपल्सन, हमें करना ही ऐसा नहीं है। आप कोई काम कर रहा हो तो आप ये नहीं कह सकते, अरे आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण काम नहीं करता, क्यों काम करते हो, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। उनकी मर्जी है, आत्मज्ञानी जो है स्वतंत्र है, आत्म उसको जो ज्ञानी को जो पाना था वो पा लिया। तो जब तक ईगो है तब तक इनकंप्लीटनेस है, जब तक इनकंप्लीटनेस है तब तक डिजायर है, ये इसका सूत्र है। तो कर्तव्य, जब तक आपका डिजायर रहेगा, जब तक प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य है। जिस दिन आपका प्राप्तव्य खत्म हो जाएगा, हमको नहीं चाहिए, कोई कर्तव्य नहीं है। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमारी बाकी जिंदगी के लिए $1,000,000 सफिशियंट हो गया, हमारे पास आ गया, आपका कर्तव्य कर्म, अब नौकरी भाड़ में जाए, जाओ जहन्नम में जाओ, हम नहीं रहेंगे, है कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, हो गया। आत्मबोध में कहा, यह लाभ न परो लाभ है, यह सुखा न परम सुखम, यद ज्ञानम न परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत अवधारयेत। उसको ब्रह्म जानो जिसको जानने के बाद में और कुछ जानने का नहीं है, जिसको पाने के, जिसको लाभ लेने का, जिसको पाने के बाद में और कुछ पाने का नहीं है, जिसके सुख को पाने के बाद में उससे बड़ा और कोई सुख नहीं है, बोलो वही जो है ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म जानो। उपदेश सार के अंदर में रमन महर्षि कहते हैं, नष्ट मानसो उत्कृष्ट योगिन, नष्ट मानसो उत्कृष्ट योगिन, नष्ट मानसो जिसका ईगो खत्म हो गया, जिसकी वासना खत्म हो गई, उत्कृष्ट योगी है वो, उससे अच्छा और कोई योगी नहीं है। उसके लिए कहते हैं, कृतमस्ति किम स्वस्थिति, जो स्वस्थिति के अंदर है, जो आत्मा में स्थित है, उसके लिए और कर्तव्य कर्म नहीं है। कृतम अस्ति किम, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप कृतार्थ हो गए, जो पाना था जीवन में पा लिया, फुलफिल्ड हो गए, कृतकृत्य हो गए, और कुछ नहीं पाना है, यही लास्ट है पॉइंट, वहां तक पहुंचना है। सो अस्मते सर्वान कामान सह, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि ऐसा ज्ञानी सब कामनाओं को वो भोग कर रहा है, सब कुछ है उसके पास में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। महात्मा लोग इसको कैसे समझाते हैं, बोले एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे में विश्राम कर रहा था, तो एक राजसिक व्यक्ति ने देखा उसको, सवेरे भी देखा वहां पर बैठा हुआ है, शाम तक लौट के आया फिर भी देखा है वो आम के पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ है। तो राजसिक लोग तो बहुत होते हैं ना कुछ करना है, करना है, कुछ करना है, कर्म करेंगे पैसा मिलेगा, कर्म करेंगे पैसा मिलेगा। तो शाम को बोलता, तुम क्या किया सारा दिन यहां बैठा हुआ, बोला हाँ, काम नहीं करते हो क्यों, बोले क्या काम करें, बोले आम के इसने आम लगे हुए हैं, जाओ इसको तोड़ के जाके बाजार में बेचो, बोले फिर, बोले बेच के पैसा मिलेगा, फिर बोला और खरीदो बेचो, आम का बिजनेस करो, जमीन बढ़ाओ और बगीचे लगाओ, बोले फिर, बोले बिजनेस बड़ा हो जाएगा, फिर एक मैनेजर रख लेना,
बोले ठीक है। फिर बोले तुम अपना मकान वकान ले लेना, बीवी बच्चों के साथ में ऐसो आराम से रहना, बीच बीच में वैकेशन में जाना, ठीक है। बोले फिर, बोले फिर क्या, तुम अपने लात के ऊपर लात लगा के बैठे रहना, लोग काम करेंगे, आराम करना। बोलता वही तो कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, तुम इतना लंबा हमको क्यों झमेला में डाल रहे हो भाई, वो तो कर ही रहा हूं, और कुछ बताओ। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आप ज्ञानी होने के बाद में इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आलसी हो जाता है, वो भी बहुत काम करता है, उसे कुछ पाना नहीं है, जो पाना था पा लिया, मगर अब दुनिया को देता है वो, उसे कुछ नहीं चाहिए। देखो अज्ञानी अगर कर्म नहीं करता है, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, तो उसको प्रत्यवाय दोष लगेगा, प्लस उसकी खुशी जो है बराबर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अज्ञानी की खुशी बराबर किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के ऊपर में डिपेंडेंट रहती है, ये हो जाएगा तो मैं खुशी रहूंगा, मगर ज्ञानी, ज्ञानी इन सब के अंदर नहीं है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं उस परमात्मा में प्रीति वाले पुरुष का इस लोक में कर्म करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। जो ज्ञानी है इस लोक के अंदर कोई कर्म करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन मतलब उसे दरकार नहीं है, हम क्यों करते हैं, हम तो खुशी के लिए करते हैं ना, हर काम खुशी के लिए करते हैं, मगर उसको खुशी का सागर मिल गया, अब क्यों काम करेगा वो। तो फिर कर्म न करने से उसे प्रत्यवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती होगी, इस पर कहते हैं उसने न करने से भी उसे इस लोक में कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अगर न करे फिर भी कोई हानि नहीं है। तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी अर्थ व्यापाश्रय नहीं होता। देखो ब्रह्मा जी भी जानना में जाए, ज्ञानी के लिए वो भी बेकार है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा का जीवन भी लिमिटेड है, सीमित है, ब्रह्मलोक भी टेम्पररी है, जितने भी 14 लोक हैं वो सारे के सारे टेम्पररी हैं, आत्मज्ञानी उसमें भी नहीं रमता, तो वो ब्रह्मा जी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। किसी फल के लिए किसी प्राणी विशेष को जो क्रिया साध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ व्यापाश्रय है। सो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है, जिससे कि उसे तदर्थ किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े, ज्ञानी को करना नहीं है। अब अर्जुन मन ही मन सोचता है क्या मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। भगवान कहते हैं परंतु तू इस सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है। अर्जुन को कह दिया तुम ज्ञानी नहीं हो, तो ज्ञानी नहीं हो तो क्या करना होगा। बोले रुको अभी तुमको बताते हैं क्या करना होगा। अर्जुन जो है भाग के जाना चाहता ना, अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता था, युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता था, और भगवान उसको बार बार कहते थे कि तुमको युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है, बार बार कहें। और आगे यहां पर हम लोगों ने देखा है चौथे श्लोक के अंदर में इसी अध्याय में न कर्म नाम अनारंभात नैष्कर्म में पुरुषो न सुस्नते, न कर्म नाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषो स्नुते, बिना कर्म किए आपको नैष्कर्म नहीं मिलेगा। आपने ये वर्ड आगे सुना है नैष्कर्म, क्या मतलब होता है, कब नैष्कर्म मिलता है, बताओ आप। नैष्कर्म का मतलब होता है एक्शनलेसनेस, कब होगा ये, जब आप डिजायरलेस होगे। डिजायरलेस कब होगे, जब वासनालेस होगे। वासनालेस कब होगे, जब ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगर कोई अज्ञानी बोले कि हम तो बैठ गए, हम तो नैष्कर्म हो गया, कर्म नहीं करेंगे, हम नैष्कर्म में हैं, होगा तो नैष्कर्म मिलता कैसे है? बोले कर्म करने से मिलता है। बड़ी उल्टी बात है, कर्म करने से नैष्कर्म मिलता? हां, नैष्कर्म का मतलब होता है एक्शनलेसनेस। जीते जी हम कर्म नहीं करेंगे। एक्शनलेसनेस कब आएगा? जब हमारे भीतर में कामना नहीं होगी। कामना होती है तो कर्म करते हैं, कामना नहीं होगा कर्म नहीं करेंगे। तो डिजायरलेस कैसे होगा, कामना रहित कैसे बनेंगे हम? जब वासना रहित होंगे। वासना रहित कब आप होंगे? वासना क्या है? अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही तो आपको आ रहा है ना डियर। व्हाट इज अज्ञान? कि आई एम नॉट कंप्लीट, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं। इसलिए जो है आपके अंदर डिजायर आती है, मैं छोटा हूं, मैं सीमित हूं। ज्ञान आने से क्या हो गया? वासना नहीं, अज्ञान चला गया। देखो कर्म का बाप है अज्ञान। अज्ञान है बोल के कर्म होता है। ज्ञान से अज्ञान चला गया, अज्ञान चला गया कामना चली गई, कामना चली गई अब आपको कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मर्जी आएगी करेंगे, नहीं मर्जी आएंगे नहीं करेंगे, हमारी इच्छा। तो भगवान ने उसको कह दिया कि अर्जुन तुम अभी नैष्कर्म के लायक नहीं हो, इसलिए तुमको कर्म करना होगा, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम आलसी मत बनो, अपने कर्तव्य कर्म जीवित काल में करके खत्म करो। कैसे कर्तव्य कर्म करने हैं? बोल दो कैसे करने हैं? भगवान के कर्म तो आप लोग सब करते हो, कर्तव्य कर्म करते हो। जब तक आप भगवान की प्रीति के लिए कर्म नहीं करोगे तब तक वो आपका मन शुद्ध नहीं करेगा, कभी नहीं होगा वो। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुमको फिर एक बार हम कहते हैं कैसे कर्म करना है। श्लोक नंबर 19।
तस्मादसक्त सततम्,
तस्मादसक्त सततम्
कार्यं कर्म समाचर,
कार्यं कर्म समाचर
असक्तो याचरन् कर्म,
असक्तो याचरन् कर्म
परमाप्नोति पुरुषः,
परमाप्नोति पुरुषः
तस्मादसक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
तस्माद् देयरफोर इसलिए हे अर्जुन तुमको कर्तव्य कर्म करना है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मरति आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट नहीं हो। भगवान ने उसके मुंह पर सीधा कह दिया कर्तव्य कर्म करना है। हम लोग की क्या स्थिति है? हम लोग अर्जुन है ना, एक ही स्थिति है, हम आत्मरति आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट नहीं है। इसलिए सततम सर्वदा हमेशा विदाउट इंटरप्शन। विदाउट इंटरप्शन मतलब दिन भर में जो भी काम करते हो सब काम भगवान की प्रीति के लिए होने चाहिए। इसलिए विदाउट इंटरप्शन सततम कार्यम कर्म, कार्यम कर्म मतलब कर्तव्य कर्म। आपकी जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म योर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू योर वर्ण आश्रम एंड योर पोजिशन इन द सोसाइटी। समझ गए आप लोग? वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एंड संन्यास, पोजिशन इन द सोसाइटी आप जहां काम करते हो, आप मैनेजर हो तो मैनेजर की ड्यूटी, जो भी आपका काम हो तो अपने कर्तव्य कर्म करो। कैसे करो? असक्त कर्म करना है मगर उसके साथ में अटैच नहीं होना है, अनासक्त होके कर्म करो। कैसे करें? समाचर, ठीक से करो। देखो, लोगों को जब सेवा काम दिया जाता है ना, तो वो कैसे करते हैं? जैसा तैसा करके चले जाते हैं। नॉट समाचर, ठीक से करो। भगवान चाहते हैं कि जैसे अज्ञानी पूरे मन से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए जैसे काम करता है, अज्ञानी कैसे काम करता है? जब आप काम में कर्म करते हो, सेल्फिश अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए कितना प्रयत्न करके काम करते हो, भगवान कहते हैं उतनी ही प्रयत्न से तुम मेरा काम करो। हम लोग को जब सेवा काम मिलता है, आज नहीं कल, ऐसा करते हैं, और मिला भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया चले गए। भगवान बार बार कहते हैं कि अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी करो। गुरुदेव का एक नाम है ओम कर्म परायणाय नमः। अपने कर्म के अंदर परायण थे, कैसे कागज काटना है, कैसे रखना है, उनकी एक एक चीज एकदम बड़े हिसाब से वो रखते थे, तरीके से काम करते थे। भगवान जो है उसको ड्यूटी करो, अभी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं आए हैं, फिर भी भगवान ने कितनी बार उसको कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, देखो ऐसा कहा उसको अर्जुन को, तुम्हारा अधिकार है, तुम काम करो, अपना कर्तव्य कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्मानी, कैसे कर्म करना है योगस्थ, उसके साथ में कैसे यूनाइटेड हो सके, ऐसा सोच के तुम करो। समत्तम योग उच्चते, कर्तव्य कर्म करते हुए उसमें हानि लाभ जो भी आए, हम समत्व रहेंगे। योग कर्म सुकौशलम, यज्ञार्थात कर्म करो, यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म बंधन होता है, यज्ञ रूपी कर्म अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बंधन होगा। यज्ञ माने विष्णु, विष्णु माने ईश्वर, ईश्वर के लिए कर्म करना मतलब हम किसी का मर्डर जाके करते हैं, बोले ईश्वर तुम्हारे लिए किया, नहीं, ईश्वर की खुशी के लिए। अब जो है ईश्वर की खुशी के लिए आप मर्डर करने जाओ, पूछो, हम उसको मर्डर करने जा रहे हैं, भगवान आप खुश हो गए? क्या उत्तर मिलेगा?
नहीं।
तो आप वो काम करोगे? नहीं। देखो, आपका निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शन टेकन केयर, काम में कर्म भी आपका जो है खत्म हो जाएगा, इतना ये सॉफ्टवेयर फिट करने से ही हो जाएगा, कोई लाइन चेंज नहीं करनी है। डॉक्टर को इंजीनियर, इंजीनियर को डॉक्टर नहीं बनना है, जो आप करते हो वही करना है, केवल ईश्वर की प्रीति के लिए करना है। लोग इतने कर्मासक्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं अनासक्त होकर करो, कितने असक्त हो जाते हैं काम के अंदर में, करते रहेंगे, बोले नहीं चाहिए, बोले नहीं हमको सेवा करनी है, क्यों? रिकॉग्निशन के लिए, समाज को पहचानना होगा कि हमने जो है ये सेवा की है। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है, ऐसा करने से क्या मिलेगा आप तो जानना चाहोगे ना, क्या मिलेगा? तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया कर। ये सब हमारे लिए है, अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण किया कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला, अर्थात अनासक्त मेरे लिए नहीं, किसके लिए है? ईश्वार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, ईश्वर के लिए है ये। उससे क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि द्वारा आप जान के रख लो, मैंने 500 बार कहा होगा आपको, कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मैं शंकराचार्य जी को पढ़ रहा हूं। ईश्वर अर्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूपी परम पद पा लेता है। कर्म योग आपको करना होगा। कर्म योग क्या है? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना होगा। नहीं करोगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुक्ति नहीं होगी।
ये साइंस है, ये विज्ञान है, करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपकी मर्जी है करो या ना करो। पुरुष है परम आपनोति, ऐसा करता हुआ पुरुष परम को पा जाता है। कैसे पाता है? बोले पहले मन शुद्ध करना है। मैं बार बार आपको कहता हूं, ओनली टू स्टेप्स आर देयर, अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति। आप इसको स्विच नहीं कर सकते, पहले आप ज्ञान बता दीजिए, लो तत्त्वमसि, ज्ञान ले लो पहले, तत्त्वमसि आपको कह देते हैं, हो गया क्या ब्राह्मण? नहीं हुआ। क्या करना होगा? मन शुद्ध करना होगा। कैसे शुद्ध होगा? कर्मयोग क्या है? ईश्वर की खुशी के लिए कर्म करना है। हम बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं या किसी अतिथि के लिए खाना बना रहे हैं, तो अगर हम ये सोचें कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, भगवान खुश होंगे कि नहीं? ये आस्ते 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 आपका मन शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। अब जो है अर्जुन का प्रश्न आता है कि भगवान आप तो मेरे को कहते हो करो 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 अपना कर्तव्य कर्म, कोई नजीर है पास्ट में किसी ने ऐसा किया है कि आप द गिनिया पिग पहली बार मेरे ऊपर कर रहे हो? कुछ बताओ, एग्जाम्पल वगैरह दो, आगे किसी ने किया कि नहीं किया है? तो भगवान बोलेंगे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, तुम जानते हो ऐसे आदमी को, तुमको बता देंगे, रेफरेंस देंगे, तुम पता कर लो। तो भगवान जो है बताएंगे, देखो आप जो है ना, आप किसी दफ्तर में काम करते हो ना, छुट्टी के लिए आपने अर्जी की, छुट्टी आपको मिली नहीं, तो आप क्या काम छोड़ देते हो? करते रहते हो ना, मन चाहे या नहीं चाहे करते रहते हो। उसी तरह आपको जो है, आप चाहे नहीं चाहे, अर्जुन भाग जाना चाहता था, भगवान ने मंजूरी नहीं दी, भाग जा, कर्तव्य कर्म छोड़ के चला जाए, इसकी मंजूरी भगवान ने नहीं दी। बार बार उसे कहते करो काम करो। तो अगर हम भी अपने कर्तव्य कर्म छोड़ के भागना चाहें, हम पीछे जा रहे हैं और पिसते रहेंगे। क्यों पिसते रहेंगे? आपको हमने साइंस बता दिया, क्योंकि हमारे कर्म लिमिटेड हैं और लिमिटेड जॉय के लिए हम करते हैं। ये मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, इतना धन मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। पर जैसे वो माइलस्टोन तक पहुंचते, फिर बोलते अरे अभी तो आगे बहुत लंबा रास्ता है, और ले लो और ले लो और कर लो, करते 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 जीवन खत्म, जीवन खत्म। और वासना का कैपिटल बढ़ा हुआ है, फिर दूसरी जगह जाके जन्म लेना पड़ेगा। अब देवी देवताओं, मेरे देवी देवताओं लोग, मुझे ये बताओ कि आपको मन शुद्ध करने के लिए क्या करना है? कौन करेगा? कौन करेगा? क्या आपके पति पत्नी करेंगे, पत्नी के पति करेंगे, कि पति की पत्नी करेंगी? खुद को करना होगा, खुद को करना होगा। कब करेंगे?
अभी से। किसने बोला कल से?
देखो ये काम केवल
जो काल करे सो आज।
देखो एक काम आपको और बता देते हैं, ये केवल मनुष्य जीवन में होगा, पशु जीवन में नहीं हो सकता, पेड़ पौधों के जीवन के अंदर भी नहीं हो सकता, और स्टोन वगैरह में भी नहीं हो सकता। आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोगों को मालूम है कि पेड़ पौधे भी कर्म नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, धर्म अधर्म का विचार नहीं कर सकते, पशु भी नहीं कर सकते, उनका मन शुद्ध करने का कोई हिसाब किताब नहीं है। मन शुद्ध करने का केवल अधिकार देवताओं को भी नहीं है। अब घबरा नहीं जाना, देवताओं को भी नहीं है। देवताओं को भी अगर आत्मज्ञान चाहिए तो उनको यहां पर इस भूमि पर आके, कर्म भूमि पर आके ज्ञान प्राप्त करना होगा, तब होगा। तो आपका दृढ़ निश्चय हुआ कुछ कि नहीं अभी? अगर आपको इस विज्ञान के अंदर कोई डाउट हो तो आप प्रश्न कीजिए, और या तो प्रूफ कर दीजिए कि आपका विज्ञान जो है साइंस गलत है। अगर आप गलत नहीं प्रूफ कर सकते तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन में उतारिए, तभी लाभ होगा। अन्यथा कह दे, हमारे गुरुदेव जो कहते थे, अदरवाइज यू आर ए डोंकी कैरिंग ए टन ऑफ गोल्ड, यू डोंट नो कैरिंग ए टन ऑफ गोल्ड। डोंकी के ऊपर भार लेके जाता है ना, आपने एक टन उसके ऊपर में सोना लाद दिया, अब उसको डोंकी को पता है
कि ये सोना है,
उसको नहीं पता ये सोना है, और बोझा लेके ढूंढ ढूंढ चलता रहता है। वही हाल हमारा है, सब समझ में आ रहा है, सब यहां है। कल से फिर सवेरे से फिर वही सेम ड्यूटी। चलो, ओ
शांति शांति शांति, हरि ओम।